कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama,
Rama, Rama, Rama, Rama,
राम राम Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Hare Krishna
Krishna
Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.
Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरिनाम संकीर्तन की समृत गौर भक्तों की जय।
जय राधा माधवा कुंद बिहारी, जय राधा
कुंज बिहारी,
राधा माधवा कुंद बिहारी,
जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी,
शोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरा वनचारी,
यमुना तीरा वनचारी,
यमुना तीरा वनचारी,
राधा राधा कुंज बिहारी।
कोटि वैष्णव वृंद की शील प्रभुपाद की
जय
तंत्राक्ष श्रीमद्भागवतम की
जय
गौर प्रेमानंदे
हरि हरि
बोल।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबको स्वागत करते हैं ये भागवत के दशम स्कंद के विविध लीलाओं की चर्चा में। पिछले पूर्व दो सत्रों में हमने भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला के संबंध में उस विषय की चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और एक अध्याय में जो नंद बाबा को वरुण देव के एक सेवक ने उठा कर लेके गया था वरुण लोक में, वो उसका चर्चा करेंगे आज हम। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत जब हम पढ़ते हैं, बाकी पुराणों को भी पढ़ते हैं, हमें एक विषय पता चल जाएगा कि हर एक देवता को कुछ डिपार्टमेंट दिया गया है, उनका हुक्म चलता है सिर्फ उस जो जिस स्थान दिया है उनको उस स्थान में ही उनका हुक्म चलता है। उदाहरण के लिए यमराज हैं, सिर्फ पापी जीवों को अपने चंगुल में रखते हैं, उनको दंड देते हैं, पुण्यात्माओं को उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है यमराज को के साथ। इसी तरह वरुण हो, इंद्र हो, चंद्र हो, अग्नि हो, ये सब लोगों का अलग अलग भूमिका निभाने के लिए दिया गया है उनको। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं इनके लिए कुछ भी पाबंदी नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए नामुमकिन करके कुछ नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण की स्वतंत्रता है, हमें पता चलता है। जैसे पूर्व दो सत्रों में हमने सुना था जो देवताओं की राजा इंद्र, उनके अहंकार को मिटाया भगवान ने, उनके पहाड़ जैसे अहंकार जो था उसको दूसरे पहाड़ गोवर्धन उठाकर मिटा दिया भगवान ने। और इस तरह अभी हम देखेंगे वरुण लोक में जाकर अपने पिता नंद महाराज को वापस लौटा कर लेके आएंगे। इसी तरह आप और भी एक कथा सुनेंगे कि भगवान कृष्ण यमलोक में यमपुरी में सम्यमणि नाम के यमपुरी में जाकर उनके गुरु संदीपानी मुनि के जो सुपुत्र थे उधर, उनको उठाकर लेके आकर अपने गुरु के पास समर्पित कर दिया भगवान ने ऐसे। इस तरह जो देवकी के छह बच्चे मर चुके थे उनको भगवान ने वापस लौटा लाया यमलोक से और देवकी की माता को दे दिया उनको दूध देने के लिए। वो बहुत बड़ा मर्म है वो लीला, क्योंकि वो तो छह के छह बच्चे असुर थे, काम क्रोध मदलोभ मोह मत्सर इत्यादि को संबोधित करने वाले होते हैं, इसलिए उनको मरना ही ठीक था उनको पहले। फिर भी मातृ प्रेम तो होता ही है ना माँ को, बच्चे पैदा हुए लेकिन हमारे पास नहीं रहे, उनके साथ समय नहीं बिता पाए, माँ की ऐसे शोक था तो उनको देखने की इच्छा हुई थी। तो अभी कृष्ण देवकी के स्तनपान करने के बाद तो देवकी के स्तन में जो दूध था वो महाप्रसाद हो गया, उसके बाद उन बच्चों को लेके आकर महाप्रसाद खिला दिया भगवान ने उनको। तो तो उनके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां भी मिट जाएंगे, वो उद्धार हो जाएंगे। वो इस तरह भगवान ने उन मृत बालकों को भी लाया वापस। इधर वरुण मरुण देव की लीला पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यमराज के लोक से भी भगवान लेके आए हैं। इस तरह एक बार एक ब्राह्मण के एक एक करके बच्चे मरते जा रहे थे जन्म लेते ही, तो ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया। तीन बच्चे मरने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन शासन कर रहा है इस देश में, वो राजा अधार्मिक होगा क्योंकि उसके राज्य में एक ब्राह्मण का ब्राह्मण के पुत्र मर रहे हैं, कोई नहीं है शासन करने वाला जो यमराज को रोकने वाले, इस तरह की बातें कर रहा था। तो अर्जुन ने देखा, बोला उनको थोड़ा शांत रहिए, हम भी क्षत्रिय हैं, आपको जो करना है बताइए, हम कर देंगे। तो उन्होंने बोला था कि देखो अभी तीन बच्चे, चार बच्चे मर गए, अभी तीन बच्चे मर गए, अभी चौथा जन्म देने वाली है मेरी पत्नी। वो बोले कि इसको बचाना है, तो आप कोई नहीं बचा पा रहे हो, आप लोग बड़े बड़े क्षत्रिय बने हो, क्या मतलब है। तब अर्जुन बोला कि ये हमारा कर्तव्य, हम करेंगे, आप चिंता मत करना। तो क्या हुआ, अर्जुन अपने हाथ में धनुष बाण लेकर वो हॉस्पिटल के अस्पताल के जो मैटरनिटी वार्ड था, जिधर गर्भवती नारी थी ब्राह्मण की धर्मपत्नी, उधर गोल गोल घूमते हुए अपने हाथ में धनुष बाण लेकर घूम रहा था कि कोई आएगा इसको यमदूत लेके जाने के लिए, मैं युद्ध कर दूंगा, उनको भगा दूंगा। लेकिन अचानक अंदर से आवाज आया, ब्राह्मण बाहर आया, बाहर आकर बोला कि अरे अर्जुन, तुम बड़ा बड़ा बात किया, तुम बचा नहीं पाया, मेरा चौथा बच्चा भी मर गया है। वो चिल्लाने लगे ऐसे, उसको भी डांटने लगे, तुम्हारी बात की क्या मतलब, तुमने वचनबद्ध नहीं रहा तुम है। तो तब अर्जुन ने सोचा कि मैं एक अग्नि में प्रवेश करके मेरे देह त्याग दूं, क्योंकि मैं अपने वचन को निभा नहीं पाया। उस समय भगवान कृष्ण आए अर्जुन के पास, बोले अर्जुन मैं तो हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे मित्र, मुझे पूछा ही नहीं, पूछे बिना तुम अग्नि प्रवेश करने जा रहे हो। तो अर्जुन ने बोला ये समस्या है। भगवान ने बोला चिंता मत करो, अपने रथ में बिठा कर भगवान ने उनको लेके गया इधर, इस ब्रह्मांड को छेद कर, ब्रह्मांड को पार करके ब्रह्म ज्योति तक पहुंच गए। ब्रह्म ज्योति में जिधर पर व्योम बोलते हैं उसको, उधर ब्रह्म ही ब्रह्म है, उधर लेटे थे महाविष्णु, जैसे हम पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता में, यस्यैक निश्वसित कालमतावलम्ब्या जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। उस महाविष्णु की एक श्वास निकलता है, अंदर जाता है, इतने में कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं उनसे, अंदर प्रवेश करते हैं उनके, इतने महान है महाविष्णु। तो उनके लोक में जब भगवान गए अर्जुन के साथ, तब महाविष्णु ने मुस्कुराया, बोला कृष्ण को, मुझे मालूम है आप ही आकर इस बच्चे को लेके जा सकते हैं, आपके स्थान में कोई और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बोलकर बोला कि वो चार ब्राह्मण के बच्चे मेरे पास हैं, मैंने ही चोरी करके रखा है, आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए, आप और अर्जुन दोनों नर नारायण ऋषि हो, अभी कृष्ण अर्जुन के रूप में आप लीला कर रहे हो, तो अभी आपकी दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया, मैं संतुष्ट हूँ, अभी बच्चे को लेके जाइए। तब अर्जुन को बड़ा, अर्जुन ने जब महाविष्णु को देखा दंडवत प्रणाम किया उसने, क्योंकि सुना है उनके बारे में लेकिन अभी देख पाया उनको, लेकिन देखा कि वो विष्णु ही कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं था कि कृष्ण को इतना जब गुणगान किया महाविष्णु ने, तब पता चला अर्जुन को कृष्ण कितने महान है। तब लौट आते समय अर्जुन ने बोला कृष्ण को, वो आपकी महानता का गुणगान वो भी करते हैं, महाविष्णु भी करते हैं, और आपके दर्शन के लिए चोरी किया उन्होंने चार बच्चों को, और आप तो ब्रह्मांड को ही छेद कर बच्चे को लाया। इस तरह भगवान कृष्ण के लिए नामुमकिन कुछ नहीं है, कहीं कहीं भी जाकर किसी भी चीज को ला सकते हैं भगवान। तो ये समझना बड़ा आवश्यक है हमको, क्योंकि हम जिस व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं वो वैकुंठनाथ है, वैकुंठपति है, और वह परम सत्य है, वो असमौर्ध्व है। असमौर्ध्व मतलब उनके सम कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। अगर इस दुनिया के देवी देवताओं को अगर हम पूजा करेंगे तो इसी दुनिया में हम हटक जाएंगे, क्योंकि स्वर्गलोक में अनेक देवताएं हैं, जैसे ब्रह्म की उपासना की हिरण्यकशिपु ने, ऐसे अनेक देवताओं की उपासना अलग अलग लोग करते हैं। तो ये लोग देवलोकों में जाते हैं, पुण्य मिटने के बाद वापस लौट आते हैं। लेकिन कृष्ण बताते हैं भगवद्गीता में, यान्ति देव व्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत्याजिनोपि माम अर्जुन। यान्ति देव व्रता देवान, अगर कोई देवता की पूजा करता हो तो उधर उनके पास जाता है, और पितृ यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करता हो तो पितृ लोक में जाता है वो, और भूत प्रेत की उपासना करता तो उनके लोकों में जाता है। अगर कोई मेरी पूजा करता है तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरे पास आते हैं मेरे लोक में। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, खास विशेष क्या है, अगर भगवान की पूजा करने वाले ब्रह्मांड को छेद कर ब्रह्मांड से पार करके वो वैकुंठ में पहुंच जाते हैं जिधर कृष्ण अपने ही लोक गोलोक में विराजमान है, तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं इस तरह की लीलाओं से सब देव देवता कृष्ण की उपासक हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो। ऐसे सुखदेव जी भगवान कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं भागवत में। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वंति दिव्य, ये सब लोग दिव्य स्तवों के द्वारा आपके गुणगान कर रहे हैं जो बता रहे हैं, और वेद उपनिषद पुराण वेदांत तक सब ग्रंथ आपका ही गुणगान कर रहा है, और अनेक योगी लोग जंगल में ध्यान मुद्रा में बैठकर आपके ऊपर ही स्मरण कर रहे हैं अंतर्यामी के रूप में। ऐसे भगवान वासुदेव को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो इधर देखिए लिस्ट आ गया ना, इधर यम ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुत सबका, उसमें वरुण का भी नाम है, तो वरुण के भी स्वामी कौन है, कृष्ण है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। भारत में अनेक लोगों का एक गलत विचार है कि तुम किसी भी देवता में जो तुमको पसंद आता है उनको चुन लो। मैं भी ऐसा ही था पहले, मेरे स्कूल के दिनों में मैं गया था मार्केट में, देखा एक शिव जी का बहुत बड़ा फोटो था, वो ध्यान में बैठे थे, वो तो बड़े योगी है ना शिव जी, महायोगी है, तो उनका फोटो उनका पोस्टर ले लिया, मेरे कमरे में लगा दिया उनको। तो कुछ समय के बाद हम मार्केट में गए, देवी का एक फोटो मिला, दुर्गा माता का, तो वो बैठी थी वो त्रिशूल के साथ। तो मैंने सोचा कि माता की करुणा की जरूरत है, इसलिए माता शिव जी की धर्मपत्नी उनको भी लाना चाहिए, तो उनको शिव जी के पास लगा दिया, उसका भी फोटो ऐसे है। और कुछ दिनों के बाद मार्केट में गया, देखा विश्वरूप दर्शन कृष्ण का एकदम बड़ा पोस्टर था, इतना बड़ा, मैं आधा घंटा रुक ही गया उधर, देखा कि अरे देखो कितने चेहरे हैं, कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, अर्जुन को भगवान दर्शन दे रहे हैं, तो उसको भी लेकर लगा दिया मेरे कमरे में। तो उसके बाद हमने सुना कि स्कंद जो है, जो स्कंद शिव जी के पुत्र हैं, अगर हम उनकी पूजा करेंगे तो सब तरह की व्याधि निकल जाएगा करके किसी ने मुझे सिखाया, खंदर षष्टि का वचम करके। वो बोलते हैं स्कंद मेरे माथे को बचाओ, आंखों को बचाओ, कान को बचाओ, शक्ल को बचाओ, हाथ को बचाओ, पैर को बचाओ, ऐसे पूरा बचाओ बचाओ करके ही वो प्रार्थना है ऐसे। तो हम वो भी बोलते थे, वो रखा था, उनका भी फोटो रखा था स्कंद का भी। और किसी ने बोला कि अरे गणेश सबसे बुद्धिमान है, उन्होंने ही वेद लिखा है, इनका वेद व्यास जी का स्टेनो बन गए थे, स्टेनोग्राफर है। स्टेनोग्राफर का मतलब है जो डिक्टेशन लेता है, लेकर उसको लिख देता है सुन सुन कर है। तो मैंने सुना बड़े बुद्धिमान है, कुछ लोगों ने बोला कि अगर तुम गणेश की पूजा करोगे तो तुम भी बुद्धिमान बन जाओगे, सब विघ्नहर्ता है, तुमको अच्छा मार्ग मिल जाएगा, तो हम उनका भी रखा है। तो इस तरह हमारे कमरे में अनेक देवताओं की फोटो थी। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि इतने देवताओं को लगाया है, इसमें सही में भगवान कौन है, इसमें है कौन है, परम पुरुष है इसमें, किसकी उपासना करना चाहिए। मैंने सोचा कि शिव जी भी बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, कुछ तो माला भी घुमा रहे हैं, तो वो भी किसी और का स्मरण करते होंगे, नहीं तो किसका माला घुमा रहे हैं, वो भी ध्यान कर रहे हैं। इस तरह हर एक देवता अलग अलग आयुध धारण करके असुरों का संहार कर रहे हैं। तो तब एक दिन हमने शिव जी की ओम नमः शिवाय करते थे, 15 साल कर रहे थे ऐसे, ऊपर छत में ऊपर चढ़कर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते थे। तो हमने उनको प्रार्थना किया कि आप जो आप मेरे जीवन में सबसे श्रेष्ठ चीज जो है मुझे प्रदान कीजिए, तब उन्होंने कृष्ण की भक्ति में जोड़ दिया। उसके बाद ही हमको एक भगवद गीता मिला, पढ़कर हमने गीता में समझ लिया हमने, नमे विदुस्वर गणाः प्रभवम् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानाम् महर्षीणाम् च सर्वशः। कृष्ण बोलते हैं नमे विदुस्वर गणा, अर्जुन ये देवता लोग भी मुझे पूरा समझ नहीं पा सकते हैं, प्रभवम् न महर्षयः, मैं ही उनका भी आदि हूँ, वो भी मेरे ही अंश हैं, देवता लोग भी और बाकी लोग भी। तो बोलते हैं कि देवता लोग बड़े महान हैं, फिर भी उतने बड़े बुद्धि होने के बावजूद भी वो मुझे पूरा समझ नहीं पाएंगे, जैसे ब्रह्मा जी का चतुर्मुख वाले हैं ब्रह्मा जी हैं, वो खुद इतने होने के बावजूद भी पूरा समझ नहीं पाएंगे। हमने सुना लीला, ब्रह्मा मोहन लीला सुना, ब्रह्मा की गोवर्धन लीला सुना इंद्र के संबंध में, अभी आज पढ़ने जा रहे हैं वरुण के। इस तरह आप देखेंगे कि देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान बताते हैं। इसलिए हम लोग समझ लेना चाहिए कि हम शास्त्र के तौर पर देखा जाए तो भगवान कृष्ण को सब देवता लोग मानकर उनकी पूजा आराधना करते हैं, साथ साथ और एक चीज देखते हैं कि कृष्ण के लिए कुछ पाबंदी नहीं, कहीं भी जाकर किसी भी कार्य कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बाधा रोक टोक डालने वाला कोई नहीं है, ये समझना चाहिए हमको। यही बात उद्धव जी भी बताते हैं कृष्ण के संबंध में, लेकिन ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि ये कर सकता है ऐसे। कभी कभी देवताओं को गलती के लिए उनको दंड भी मिलता है। एक बार यमराज की एक गलती हो गई, मांडव्य मुनि नाम के मुनि के बचपन में उन्होंने कुछ तितली को पकड़कर बांधा था एक धागा में, उसके लिए उन्होंने एक दंड प्रदान किया था यमराज ने एक राजा के द्वारा। एक बार कुछ चोर लोग उनके झोपड़ी में घुस गए, उनको चोरों को पकड़ते समय इनको भी पकड़ कर लेके गए, उनको दंड मिला एक राजा के पास। तो तब मांडव मुनि कुपित हो गए, वो बोले अरे बचपन में क्या हुआ, शरारती जो है इसके साथ एक तितली के साथ, उसके लिए तो दंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब तक 7-8 वायस तक उनके छोटे अज्ञानता में किया हुआ कर्म के लिए दंड नहीं दिया जाता है। लेकिन यमराज का थोड़ा भूल से गलती हो गया तो उन्होंने यमराज को दंड दे दिया, बोला कि तुम अभी एक शूद्र बन जाओ। क्या बना यमराज? विदुर जी बना अगले जन्म में मांडव मुनि के श्राप से। इस तरह आप देख सकते हैं कि देवता लोग जो हैं उनकी पदवी कभी कभी खो बैठते हैं, इंद्र भी खो बैठता है, वो एक पदवी ही है, इंद्र का एक पदवी है, यमराज का एक पदवी है, ब्रह्मा का भी पदवी है, ये सब पदवी है, सिर्फ शिवजी का पदवी नहीं है। शिवजी जो हैं वो सब जीवों से परे हैं लेकिन विष्णु के सेवक हैं, उसको बोलते हैं शंभू तत्व बोलते हैं, जीव तत्व शंभू तत्व विष्णु तत्व बोलते हैं इसे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अनेक देवता लोग इस दुनिया में विविध डिपार्टमेंट को उसका देख रेख करते हैं, लेकिन कृष्ण के ही भक्त हैं। नारायण परा देवा, नारायण परा वेदा, देवा नारायणांगजा, ऐसे भागवत में बताया गया है। देवा नारायण अंगजा का मतलब है भगवान नारायण के अंग से वो जन्मे हैं, उनके ही दास हैं, उनके ही सेवक हैं, ये बताया गया है। तो ये बात हम सीखेंगे आज नंद महाराज के नंद महाराज और वरुण के इस लीला में। तो ये लीला क्या है, जैसे आप देख रहे हैं एक बार क्या हुआ, गोवर्धन पूजा जब होने के बाद वो कब हुआ, तो हमने जो कल तक सुना था हमने, उसके बाद ही ये लीला आ रहा है। तब बहुत जोरदार बारिश हुआ था, हमने बताया था 7 दिन के लिए है ना, उसके बाद 9 दिन ये चंद्रमा जो है बढ़ता गया ऐसे, और 10वां दिन इंद्र ने कृष्ण की पूजा किया। 7 दिन में लीला हो गया था, लेकिन भगवान ने 3 दिन उनको छुट्टी दिया, किसको? इंद्र को। क्यों? थोड़ा सोचने के लिए बैठकर, गलती हो गया ना इंद्र से, बड़ा गलती हो गया ना ब्रजवासियों के ऊपर, तब भगवान ने सोचा कि थोड़ा टाइम देंगे इसको, थोड़ा सोचकर सही निष्कर्ष पर आप पहुंचे और मेरे पास आए, तो 2-3 दिन भगवान ने दे दिया, टाइम दे दिया उसको। और उस टाइम में भगवान ने क्या किया, ब्रज के वृंदावन के कोने कोने में जाकर देखा कि क्या क्या नुकसान किया है इसने बारिश के द्वारा, ऐसे थोड़ा सुपरवाइज नेतृत्व करने के लिए भगवान गए थे। वापस लौटाने के बाद इंदिरा आया दसवां दिन, ऐसे अष्टांग का दंडवत प्रणाम किया कृष्ण के श्री चरणों में, रो पड़ा और बोला कि मैं सब मूर्खों में से महामूर्ख हूँ मैं, कितना बड़ा गलती हो गया मेरे हाथ से, आपको अपराध किया, आपके भक्तों का अपराध किया, मारने की मैंने प्रयत्न किया, आप जो भी दंड आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, फिर भी देखिए भगवान हम तो आपके ही सेवक हैं। कोई राजा होता है अगर कोई उसका सेवक होता है तो वो माफ़ कर देता है, छोड़ देता है, इस तरह आपकी इच्छा हो तो आप छोड़ भी सकते हैं, मुझे आपके पास क्षमता है, दंड देना तो दंड भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने अच्छा सबक सीख लिया, अहंकार के वश में आ गया था, इत्यादि हमने सुना सुंदर प्रार्थनाएं वो सब बोला इंदिरा। और बोलने के बाद ये सुर भी गाय भी साथ में थी, उन्होंने भी कुछ प्रार्थना बोला और इंद्र ने अभिषेक की कृष्ण की। सब लोगों ने घोषणा किया कि कृष्ण ही असली इंद्र हैं, सारे दुनिया के इंद्र हैं वो, इस दुनिया का ही नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो इस तरह से सब देवताओं ने पूजा आराधना की उनकी। उसके बाद क्या हुआ, 11वां दिन एकादशी, सब ब्रजवासी लोगों ने उसको पालन किया। और 12वां दिन क्या है, द्वादशी है ना, तो वो दिन सुबह सुबह जब एकादशी, उस एकादशी जो था वो थोड़ा छोटा एकादशी था, क्यों, कुछ कुछ एकादशी आप देखेंगे सुबह जैसे 3 बजे 4 बजे एकादशी पूरा हो जाता है, और द्वादशी के दिन चालू हो जाता है, तो कभी कभी समय पराना समय जो है बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए नंद बाबा और बाकी गोप जल्दी उठ गए, यमुना में गए नहाने के लिए। तो उस समय वरुण देव का एक सेवक था, अभी आगे बढ़ाए, तो वरुण का एक सेवक था, उसने सोचा कि ये एक अशुभ समय में ये लोग नहा रहे हैं, ऐसे उन्होंने सोचा। आगे करेक्ट, तो पढ़िए नंद महाराज।
नंद महाराज द्वादशी के दिन यमुना में स्नान के लिए गए, क्योंकि वे गलत समय पर स्नान के लिए गए, इसलिए वरुण देव के सेवक उन्हें बंधक बनाकर वरुण लोक ले आए, ले गए।
हाँ, नंद महाराज बाद में बताया जाएगा इसके संबंध में, श्रीधर स्वामी बताते हैं, श्रीधर स्वामी उनके टीका में बताते हैं कि जो वरुण के सेवक थे वो लोग शास्त्रों के विधि विधान वो जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने नंद बाबा को पकड़कर अपने वरुण लोक में लेके गया, ऐसे बताते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं था, वो कारण बताते हैं इधर शास्त्र में क्या दिया है, इधर बताते हैं विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर उसको एक्सप्लेन करते हैं। अजानता का मतलब क्या है, एक सेवक जिसको भक्ति शास्त्रों का जानकारी नहीं हो, इसलिए उसको मालूम नहीं था कि जब द्वादशी जब छोटा होता है उस समय एक व्यक्ति सुबह प्रातः काल में जल्दी उठकर नहाने के लिए जा सकता है, इसलिए वरुण देव के पास जब जाएंगे नंद बाबा तब वरुण देव अपने सेवक को डांटेंगे, वो बोलेंगे कृष्ण को बाद में, हे भगवान आपके पिताजी को गलती से लोगों ने लाया है इधर, गलती उनका नहीं था, मेरे सेवक का अज्ञानता था, ऐसे वो बताएंगे उधर उनको। और करेक्ट, और इस तरह वरुण उनको स्वागत करेंगे, अभी अब देखेंगे आगे पढ़ेंगे हम, इसलिए वरुण देव ने भी मान लिया था कि गलती उनके सेवक का था, नंद बाबा का नहीं था, ऐसा नहीं कि वो अशुभ काल में नहाने के लिए गए थे, ऐसे सोचा था उसके सेवक ने। आगे पढ़िए।
श्री वरुण वाच, यह देखकर कि भगवान ऋषिकेश पधारे हैं, वरुण देव ने घूम घाम से उनकी पूजा की और इस प्रकार बोले, मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, हे भगवान जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक संसार के मार्ग को पार कर सकते हैं।
हाँ ठीक है, अभी कृष्ण जाने के बाद पूजा आराधना करते हैं, इसके पहले क्या हुआ, जब नंद महाराज को उठाकर वो सेवक गया वरुण लोक में, तब नंदा बाबा के साथ जो गोप थे उन्होंने देखा कि अंदर डुबकी लगाया पानी में नहाने के लिए, लेकिन अचानक गायब हो गए। हाँ, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, किधर गए? सब गोप जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण का नाम बुलाने लगे, हे कृष्ण हे राम ऐसे पुकार रहे हैं। वो एक मिनट में पढ़ता हूँ श्लोक। हाँ इधर एक श्लोक आता है, इधर हाँ इधर है, ये तीसरा श्लोक है। चक्रशस्तम अपश्यंतः कृष्ण रामेति गोपकाः भगवांस्तदुपश्रुत्य पितरं वरुणाहृतं तदंतिकं गतो राज स्वानाम अभयदो विभुः। ये बोलते हैं इधर इस तीसरा श्लोक में, इस अध्याय में, ये 28 चैप्टर 10:28-3 ये बताते हैं कि गोपो ने जब जोर से पुकारा हे कृष्णा हे राम, ऐसे भगवान के नाम को पुकारते हैं, जब कृष्ण ने सुना उनकी आवाज, उनकी पुकार, उनके रोना, तुरंत वो समझ गए कि मेरे पिताजी को वरुण ने पकड़ा है। भगवान सबको अभय प्रदान करने वाले होते हैं, अभय दह ऐसे बताया गया है इधर, अभय द कथा राजन स्वानाम अभयद विभु। विभु का मतलब है जो सबसे बड़ा भगवान, हम अणु हैं और भगवान विभु हैं, और स्वानाम का मतलब अपने ही भक्तों के चिंता को हमेशा दूर करके उनको भय से मुक्त करने वाले भगवान, स्वानाम अभयद विभु, अभय प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण उधर तुरंत पहुंच गए, क्योंकि उपश्रुत्य पितरम वरुण ऐसे बताते हैं। उपश्रुति का मतलब है उसको सुनकर। इधर से हम एक महत्वपूर्ण चीज सीख सकते हैं, अगर हम भी भक्तों के साथ भक्ति करते हो, अचानक हमारा कुछ हो गया भक्ति में, गड़बड़ समस्या हो गया, तो बाकी भक्तों लोग चिल्लाकर भगवान को पुकारेंगे, हे भगवान बचाओ इस भक्त को, माया में पड़ गया है, कुछ समस्या में पड़ गया है, ऐसे बोलेंगे ना। बाकी भक्तों के पुकार सुनकर भगवान क्या करेंगे, तुरंत उस भक्त को रक्षा करेंगे। इसलिए भक्ति अकेले नहीं करना चाहिए, बाकी भक्तों के साथ करना चाहिए। नंद बाबा भी अकेले नहीं गए नहाने के लिए, बाकी अपने मित्रों के साथ गए वो, ऐसे हम देख सकते हैं। और दूसरा है, अगर हमारे लिए दूसरे भक्त लोग भगवान को पुकार कर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, तो उससे हम भी बच जाएंगे। इस तरह भगवान अभी उनको बचाने के लिए जाएंगे अभी। तो आगे चौथा श्लोक बताया गया है, प्राप्तम वीक्ष्य ऋषिकेशम लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वाह तद्दर्शन महोत्सवः। उनको लगा वरुण को, अरे महोत्सव हो रहा है मेरे लोक में, क्यों परम मेरे स्वामी आए हैं। जैसे हमारे पूना मंदिर में भी अगर जीबीसी आते हैं, परम पूज्य गोपक्ष महाराज, परम पूज्य रानाथ महाराज, परम पूज्य लोकनाथ महाराज, अभी अभी हाल ही में परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज आए थे ऑनलाइन के द्वारा है। तो इस तरह जब आते हैं एकदम एक महोत्सव का माहौल छा जाता है ना। कैसे लोग गेट से इतने फूल की आयोजन करते हैं, ताकि फूल के ऊपर चलने के लिए उनको, और अंदर आने के बाद उनको प्लेट दिया जाता है भगवान को चढ़ाने के लिए। और गुरु पूजा वगैरह थोड़ा लंबा ही होता है ना। जब जीबीसी आते हैं जो 15-20 मिनट का गुरु पूजा 1.25 घंटे का हो जाता है, क्लासेस भी और बड़े क्लासेस होते हैं, और हजारों लोग आते हैं उनको मिलने के लिए, एक तरह का उत्सव हो जाता है ऐसे महोत्सव। इस तरह भगवान कुछ अनाउंसमेंट किए बिना, पहले ही बोले बिना आ गए, क्योंकि अपने पिताजी को लेके जाने के लिए। लेकिन वरुण देव ने सोचा कि तद दर्शन महोत्सव है, मेरे आंखों से उनका दर्शन प्राप्त करना ही एक आंखों के लिए क्या है, महोत्सव है, ऐसे उन्होंने सोचा। वैसे तो अगर पता चलता था उनको तो तोरण वगैरह लगा देते, भेरी नाद इत्यादि वगैरह उसके आयोजन करते थे, अनेक स्त्रियां आकर नाचेगी और ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे और भगवान के लिए अच्छा स्वागत करके उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको व्यवस्था करेंगे ठहरने की इत्यादि। लेकिन भगवान बोले बिना आ गए, फिर भी उन्होंने सोचा कि मेरे दर्शन के लिए महोत्सव है। पूजयित्वा, पूजा किया उन्होंने भगवान की, ऐसे बताया है इधर। और साधारण पूजा नहीं, महत्वा पूजया पूजयित्वा लगे, इसका मतलब बहुत जैसे छोटा पूजा भी हम लोग करते हैं कभी कभी, क्या होता है, तीन चीज होता है उसमें, एक अगरबत्ती और एक दिया, एक छोटा दिया और अंत में फूल, तीन चीज हो छोटा पूजा। बड़ा पूजा मतलब बड़ा प्लेट, देखा आपने आरती प्लेट, उसमें अनेक आइटम होते हैं, षोडश उपचार करके बहुत बड़ा। जैसे उत्सव के दिनों में कभी कभी आरती लैंप में भी बहुत कुछ दिया होते हैं, बहुत बड़े प्लेट में करते हैं। इस तरह उन्होंने, आपने देखा होगा गंगा पूजा कैसे करते हैं, देखा आपने, बहुत बड़ा आरती ये होता है, देखा आपने, ऐसे होता है, अनेक दिया होते हैं उसमें, ऐसे महत, ऐसे महत्या पूजयित्वा, ऐसे बताया गया भगवान ऋषिकेश की, उन्होंने पूजा ऐसे की, ऐसे बताया है। श्री वर्ण उवाच अद्य मे निवृतो देहो अद्यैवार्तोदिगत प्रभो त्वत्पादो भाजो भगवन् अवापु पारमद्वनः। पढ़िए अनुवाद पांचवा।
श्री वरुण ने कहा, आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया, हे प्रभु निस्संदेह अब मुझे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो चुका। हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक संसार के मार्ग को पार कर सकते हैं।
मतलब आपके दर्शन ही जीवन में प्राप्त करने योग्य सार्थकता है, तो आपका दर्शन ही प्राप्त हो गया मुझे, जिसके लिए कोटि कोटि ऋषि मुनि देवता लोग तड़पते हैं, आकांक्षा करते हैं, वो मुझे प्राप्त हो गया आज, ऐसे बता रहा है वरुण देव। तो ये सब कौन देख रहे थे? नंद बाबा देख रहे थे। नंद बाबा देख रहे थे कि क्या बोल रहा है, मेरे बेटे को इतना गुणगान कर रहा है, बोल रहा है कि यही परम सत्य है, ये बोल रहा है छठे श्लोक में वरुण देव, नमस्तोभ्यम भगवते ब्रह्मणे परमात्मने ना यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। बोलते हैं कि आप ब्रह्मणे का मतलब है आप पूर्ण हो सब चीजों में, परमात्मा ने आप ही सब जीवों के नियंत्रण करता हो, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। ऐसे अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना, देखिए बताते हैं इधर मेरे मूर्ख सेवक लोग वैदिक विधि विधान को सही ढंग से जानते नहीं, वो लोगों ने क्या कर दिया, अजानता अज्ञानता के कारण आपके पिताजी को पकड़ कर लेके आए मेरे पास। आनी तो यम तव पिता तद भवान क्षंतु अर्हति, तो तुरंत उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने आपके पिताजी इधर जो बैठे हैं उनको इधर लाया है वो लोगों ने, लेकिन अब मुझे माफ कर दीजिए इस गलती के लिए। देखिए जब इंद्र का मान भंग हुआ उसके बाद न्यूज, वो जो संदेश है सारे दुनिया को पहुंच गया, अभी सब देवी देवता लोग एक विषय तो सीख लिया क्या है, कभी कभी हम अहंकार के वश में आ जाते हैं, और अहंकार के वश में आकर परम भगवान हमारे मालिक हमारे स्वामी उनको भी कभी कभी उनके साथ शरारती करते हैं, जिसके कारण अभी इंद्र का मान भंग हुआ, हमारा भी मान भंग होने की संभावना है। इतना तक सब देवता समझ गए कि अभी अभी हुआ ना, पूर्व अध्याय में ही अभी हुआ है, लेटेस्ट न्यूज है वो संदेश है। तो अभी वरुण देव ने सोचा कि मैं भी इंद्र जैसे कुछ गलती करना बैठू, इस तरह गलती करने के पहले से मैं माफी मांग लेता हूँ, माफी मांग लिया उन्होंने ऐसे। इधर जीव गोस्वामी बताते हैं दूसरे पैराग्राफ में, पढ़िए टेक्निकली दूसरा पैरा। एक तरह से
नंद महाराज का सूर्योदय के पूर्व जल से प्रवेश करना उचित था। श्रील जीव गोस्वामी ने इस अध्याय के प्रथम श्लोक की टीका में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, वे विशेषताया छोटी होने के कारण एकादशी केवल 18 घंटों की थी, अतः सूर्योदय के पूर्व ही द्वादशी के 6 घंटे बीत चुके थे जिनमें उपवास तोड़ना था, क्योंकि सूर्योदय होने पर व्रत भंग का सही समय बीत चुका होता, इसलिए नंद महाराज ने अंततः अशुभ समय में जल में प्रवेश करने का निश्चय किया।
इसलिए लास्ट लाइन में बोलते हैं नंद महाराज तो भगवान के परम पिता थे, इसलिए भगवान के पिता तो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है ना, उनको भी ऐसे ही आदर देना चाहिए, इसलिए ऐसे महान शुद्ध भक्तों को किस दुनिया के देवी देवता अपने चंगुल में नहीं ला सकते हैं, अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं। ये भी दूसरी बात समझना चाहिए हमको। कभी कभी ऐसे होता है जैसे दक्षा प्रजापति, वो शिव जी को अपराध किया उसने, इसके कारण क्या सोचा था उसने, हे ये देखो ये मेरा दामाद है, लेकिन ये उठ नहीं रहा है, सब लोग उठ रहे हैं, आदर दे रहे हैं मुझे, लेकिन ये नहीं दे रहा है, तो मेरे बेटी को इसको ही दिया है मैंने पाणी ग्रहण में, विवाह में दिया है, लेकिन मुझे आदर नहीं दे रहा है, इस तरह सोचकर उनके ऊपर अपराध किया। लेकिन असली रूप में सब लोग शिव जी को उनके दामाद के रूप में नहीं देखा, बाकी सब लोग देख रहे थे वैष्णवानाम यथा शंभु, ये तो आग जैसे हैं शिव जी, ये सब वैष्णवों में श्रेष्ठ है, पूजनीय है, भगवान की प्रिय सखा है, प्रिय से सख्य हो क्षण संगमेन, चराचर गुरु है, लोक गुरु है, मुनि नाम गुरुम है, ऐसे शिव जी की जटाधर है, तीव्र तप है, तो शिव जी की महानता सब लोग जानते थे, योगीश्वर है, योगियों में श्रेष्ठ है वो, ऐसे शिव जी को साधारण दामाद सोचना उसका मतलब है वो शिव जी को अपने शारीरिक पहचान से देख रहा था वो, इसको बोलते हैं उपाधि के साथ कोई पहचानता हो। बड़ा मेरे गुरु महाराज बोलते थे पति पत्नी को, देखो पति पत्नी भक्ति में अगर जुड़े नहीं है तो दूसरा नाता रिश्ता होता है, भक्ति में जुड़ने के बाद तुम कृष्णदास हो और वो कृष्णदासी है, तो कृष्णदास कृष्णदासी को एक वैष्णव के रूप में ट्रीटमेंट देना होता है। हम कभी कभी हमारे जान पहचान के जो निकट लोग होते हैं उनके ऊपर अपराध कर बैठते हैं ये सोच कर कि ये तो जैसे माता पिता सोचते हैं बेटा मेरा उसको नंगा देखा मैंने बचपन में, अभी बड़ा हो गया, बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसे सोचते हैं, लेकिन भक्त बन गया तो उनको अलग तरीके से देखना चाहिए, एक भक्तिमय दृष्टिकोण से देखना चाहिए उनको। इसी तरह नंद बाबा को ये जो सेवक जो था वरुण के, उसने कैसे देखा, तो ये भी कुछ कोई जल्दी अशुभ समय में नहा रहा है पकड़ के लेके जाओ, उन्होंने देखा ही नहीं कि किसके पिता है, अगर वो जानता था कि कृष्ण के पिता है और कृष्ण परम सत्य है क्या ऐसे करता था वो। देखिए अगर आपके कॉलेज में आपके क्लास में एक विद्यार्थी बैठा है लेकिन वो प्रधानमंत्री का बेटा, उदाहरण के लिए है, नहीं तो प्रेसिडेंट का बेटा है, प्रधानमंत्री का, नहीं तो चीफ मिनिस्टर का बेटा है, आपके कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसके साथ व्यवहार करते समय हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हाँ ध्यान से सावधानी से करेंगे, क्या उसके साथ झगड़ा करेंगे, अगर उसके साथ झगड़ा करेंगे तो हमारा सीट भी निकल सकता है कॉलेज से, है कि नहीं है, हाँ कॉलेज को ही बंद कर देगा। इसलिए हम इस तरह, ये नंदा बाबा किसके पिता हैं, कृष्ण के पिता हैं, वो मूर्ख सेवक जानता नहीं था उसको, ऐसे बोल रहे हैं वरुण देव, वो जानता नहीं था, माफ कर दीजिए मुझे, वो क्यों बोल रहे हैं मुझे माफ कर दीजिए, गलती क्या वरुण देव का था, क्या किसका गलती था, उसके सेवक का था, लेकिन सेवक का गलती के लिए मालिक जो है उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए, लोग तुरंत पूछेंगे किसका बेटा है, ये किसका शिष्य है, इसलिए आप देखेंगे जब चतुष्कुमारों को अपराध किया था कि जय विजय ने उनको रोका था ना, तब भगवान विष्णु आगे बोले कि सेवक जो गलती करते हैं उसका जिम्मेदारी मालिक लेना चाहिए, स्वामी मैं इनका स्वामी हूँ तो मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर आप मुझे दंड देना चाहते हो मेरे चार भुजाओं में दो भुजा मैं काट दूंगा आपकी खुशी के लिए, ऐसे बोला उन्होंने। तुरंत चतुष्कुमार ने बोला नहीं 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 ऐसा मत बोलिए, लेकिन तब उन्होंने बोला कि अगर कोई सेवक है दुनिया में अगर गलती करके अपने स्वामी को बदनाम लाता है, ये किसके बराबर है, विष्णु बताते हैं जैसे किसी के शरीर में ये होता लेप्रेसी होता है, मालूम आपको क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं कुष्ठ रोग इस नो नो ये जो नहीं नॉट लेट नॉट लेप्रेसी नहीं है, ये वाइट वाइट होता है ना, कोड़ा बोलते हैं, कोड़ा नहीं है, हाँ कोड़ा ही बोलते हैं उसको, हाँ ऐसे कभी कभी कुछ चमड़े में आता है, हाँ ऐसे कोई व्याधि होता है अच्छा नहीं दिखता, अगर किसी को होगा ना इधर होगा हाँ तो ऐसे रैश स्पेशल ऐसे कुछ लोगों को ये होता है, आपने देखा होगा ऐसे, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो सेवक अपने स्वामी का बात मानकर नहीं चलता है वो जैसा है वो, ऐसे भगवान बताते हैं, वो होने से तो ये सुंदर व्यक्ति में भी क्या हो जाता है वो बदसूरत हो जाता हो, इस तरह है भगवान बताते हैं। तो वरुण देव इसलिए अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैं मानता हूँ मेरा गलती है, आठवां श्लोक में बताते हैं ममापि अनुग्रहम कृष्ण कर्तुम अर्हसि अशेषदृक् गोविंद नीयताम एष पिता ते पितृवत्सल। हे गोविंद जी, नियता हमेशा लेके जाइए, आपके पिताजी इधर हैं। आप तो पितृवत्सल हो, आपको बहुत प्रिय पिताजी हैं आपके। हमने इधर लाया है उनको, अभी आप लेके जा सकते हैं, इधर हैं आपके पिताजी। इस तरह बोलकर उनको देकर और दंडत प्रणाम करेंगे, पिक्चर दिखाइए। वो हाथ जोड़कर वो प्रार्थना कर रहे हैं, देखा आपने वरुण देव यार। आगे अभी इधर कृष्ण की, कृष्ण कैसे स्वामी है उसके बारे में कुछ थोड़ा वर्णन किया है मैंने, क्योंकि ये लीला का मूल शिक्षा यह है कि अगर हम कृष्ण की असली स्थिति नहीं जानेंगे तो हम गलत करके बैठेंगे हमारी ओर से। इसलिए यू कैन चेंज ओवर टू दिस वन। तो देखिए, जीव गोस्वामी कारण दे रहे हैं क्यों हमें कृष्ण को परम सत्य मानना चाहिए। बताते हैं, कृष्ण एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, लक्ष्मी जी विराजमान है उधर, और वो जीवों के सब तरह के ताप को मिटाने के लिए सक्षम है। देवता लोग मिटाते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं, इधर से मिटाकर स्वर्गलोक में पहुंचाएंगे, वापिस आप लौट आओगे आप। लेकिन कृष्णा आपके सब समस्याओं का हल, जैसे बोलते हैं तापत्रय उन्मूलनम, बोलते हैं ना इसे। और उनका नाम है त्रयदीश, कृष्ण का नाम क्यों? क्योंकि तीन गुणों का भी स्वामी है, भगवान गुणातीत है। तीन धामों के भी वो स्वामी है, जैसे द्वारका मथुरा वृंदावन, तीनों धाम के स्वामी है। तीनों जगत का भी वो स्वामी है, क्या है? स्वर्गलोक, भूलोक और अधलोक है, ये तीनों के स्वामी है वो। इस तरह हम बता सकते हैं तीन शक्तियों के भी स्वामी है वो, संदिनी संबित हलादिनी होते ना। इस तरह और तीन शक्तियां भी हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। और तीन गुणावतारों के भी स्वामी है वो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे बोल सकते हैं। और इस तरह मास्टर ऑफ थ्रीज, ऐसे एक श्लोक में भागवत में बताया गया है इसे। वो सर्व आकर्षक हैं, सबको परमानंद प्रदायक हैं, प्रदान करने वाले होते हैं, वो ही सबके स्रोत्र हैं। तो नारायण और कृष्ण के संबंध में शास्त्र बताते हैं कि नारायण के पास 60 गुण हैं, लेकिन कृष्ण के पास 64 गुण हैं। 64 गुण हैं कृष्ण के पास। वो चार गुण क्या है अधिक कृष्ण में, मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूं। तो इस श्लोक में एक सुंदर श्लोक है रूप गोस्वामी का, बहुत सुंदर श्लोक है ये। यही है, सब लोग पीछे बोलिए। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल बारिदिहि, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल, त्रिजगन्मानसाकर्षी मुरली कलकूजितः, असमानोऽर्द्वरूपश्री विस्मापित चराचरः, लीला प्रेम्णा प्रियादिक्यं माधुर्यं वेणुरूपयोः इत्यसाधारणं प्रोक्तं गोविंदस्य चतुष्टयम्। सुंदर श्लोक है, रूप गोस्वामी लिखते हैं ये गोविंदस्य चतुष्टयम्। भगवान गोविंद में चार गुण खास है, विशेष है, क्या है वो बताते हैं इधर से। लीला माधुर्य सर्व अद्भुत चमत्कार, बताते हैं कि उनके लीला जो होता है वो समुद्र में जो लहरें उठते हैं, इस तरह भगवान के लीला में लीलाएं जो होते हैं वो खास लीलाएं करते हैं भगवान। जैसे आप कभी भी नहीं देखेंगे विष्णु की कोई माता है उनको नियंत्रण कर रही है एक छड़ी लेकर, आप कभी देखेंगे नहीं, लेकिन भगवान के ऐसे वात्सल्य लीला है। ऐसे आप कभी देखेंगे नहीं विष्णु राम के लीलाओं में कि वो चढ़ गए भगवान के कंधे के ऊपर कोई उनके भक्त उनके उनके पार्षद कभी नहीं करेंगे, वो दूर में ही दंडवत प्रणाम करेंगे। लेकिन कृष्ण की लीला में आप देख सकते हैं इस तरह है। तो उनकी लीला जो है विशेष है, साधारण लीला नहीं है कृष्ण के है। तो सर्व अद्भुत चमत्कार है ऐसे बताते हैं। लीला कल्लोल वारिधि, कल्लोल का मतलब है जो जैसे समुद्र में लहरें ऐसे आते हैं ना, ऐसे आकर ऐसे टुकराते हैं इस तरह, उसको कल्लोल बोलते हैं उसको है। ऐसे लीला में भगवान की विविध लीलाएं आपको पता नहीं चलता कि किस लीला को स्मरण करो, हर एक लीला में मधुरिमा है ऐसे है, ऐसे बताते हैं। अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल है, बताते हैं कि उनके लीलाओं में प्रेम माधुरी है उसमें, ऐसे बताते हैं। ये लीला माधुरी तो बताया अभी मैंने, उसमें प्रेम माधुरी है क्योंकि उनके भक्तों के साथ जो जिस तरह जिस श्रेणी के प्रेम का आदान प्रदान करते हैं वो बाकी लीलाओं में भी नहीं होता। जैसे प्रभु रामचंद्र और उनके ये होते हैं भक्त होते हैं, उनके पास बहुत ऐश्वर्य भावना होता है, भगवान को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा निकटता के साथ आकर इसको अंग्रेज में क्या बोलते हैं, औपचारिक रूप से ज़्यादा उनकी पूजा होता है। उसका मतलब है ऑफिशियल उनको भगवान को स्वामी मानकर अपने आप को सेवक मानकर ही करते हैं, उससे बढ़कर कभी भी इतने निकट नहीं हो जाएंगे, उनके मित्र मानेंगे अपने आप को। कभी आपने सुना है कि लक्ष्मण ने अपने आप को मित्र जैसे मान लिया रामचंद्र की, नहीं तो हनुमान, इतना तक कि सुग्रीव गुह इत्यादि राम के साथ बात भी नहीं करते थे, सीधा हनुमान के द्वारा ही बात करते थे वो, ऐसे एक ऐश्वर्य भावना रहता है उसमें। लेकिन कृष्ण के लीलाओं में अतुल्य मधुरा प्रेम मंडित प्रिय मंडल है, ऐसे बताते हैं कि कृष्ण के लीला में ऐसे प्रेम है, चाहे यशोदा कृष्ण का हो, गोपी गोपियां के रास नृत्य हो, जो भी हो उसमें प्रेम बड़ा पड़ा है, इतने निकट तक दुनिया ने कहीं किसी में भी नहीं देखा। त्रिजगन मानस आकर्षित, त्रि जगत तीनों जगत के लोगों के मन को आकर्षित करने वाले मुरली बजाते हैं भगवान, उसको वेणुमाधुरी बोलते हैं। जब कृष्ण मुरली बजाते हैं वृंदावन में तब ब्रह्मा जी अपने पूजा को बंद कर देते हैं, आ जाते हैं बाहर सुनने के लिए। कुछ ऋषि मुनि लोग जो गुफा के अंदर बैठकर तपस्या करते हैं, तपस्या को त्याग देते हैं, बाहर आते हैं ढूंढते हैं कृष्ण को, तो तपस्या का फल मिल गया अभी है? तो मुरली की बात सुनते हैं वैसे। जो जब गोवर्धन को उठाया भगवान ने तब भगवान मुरली बजाने लगे तो सब गोप बालक बोल रहे थे कि हे कृष्ण मुरली मत बजाओ, तुम्हारी मुरली बजाना सुनने से क्या होता है, जो स्थिर चीज जो है वो अस्थिर हो जाते हैं है? और अस्थिर चीज स्थिर हो जाते हैं, जैसे उड़ने वाले पंछी बैठ जाता है एक डाली में चुप चाप बैठकर ध्यानपूर्वक सुनता है मुरली ऐसे है। लेकिन बहने वाली यमुना क्या हो जाती है, अभी बंद हो जाती है, बहती नहीं, एक क्षण में रुक जाती है कृष्ण की मुरली सुनने के लिए ऐसे। लेकिन पत्थर जो होता है वो पिघल जाता है, इसलिए बोला कि अगर गोवर्धन पिघल जाएगा तो हमारे ऊपर बरसाएगा पत्थरों को, है ना। लेकिन किसी ने बोला अरे ऐसा मत सोचो, ये गोवर्धन अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, वो उनको मालूम है कि हम लोग हैं पीछे हैं उसके नीचे हैं। तो इस तरह भगवान के वेणु माधुरी है। असमानो अर्द्वरूप श्री विस्मापित चराचर असम अवर्ध्व, मतलब उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं, किसमें, रूप में, रूप में, श्री में, उनके उनके तो वो तो स्वामी है, लक्ष्मीपति हैं वो, उनके सुंदर स्वरूप रूप माधुरी, क्योंकि वो सीधा नहीं खड़े रहते हैं, त्रिभंग ललिता में खड़े रहते हैं, ऐसे मुरली बजाते हैं, इधर एक स्थान इधर है, एक कमर में है, एक पांव ऐसे रखते हैं, तो ऐसे तीन स्थान में टेढ़ा होते रखते हुए भगवान खड़े हैं। क्यों ऐसे खड़े हैं, क्यों सीधा, जैसे एनसीसी में हम लोग अटेंशन में खड़े रहते हैं ना, ऐसे करते हैं, देखा आपने एनसीसी, और पाम भी ऐसे रखते हैं, देखा आपने वी जैसे, हाँ ऐसे रखते हुए, तो अलग अलग पोस्टर होता है एनसीसी, इसमें एनसीसी में तो ऐसे करते हैं, तो पाम ऐसे रखना तो पीछे करते हैं, ऐसे ऐसे रहते तो साथ में रखते हैं, सलाम मारते हैं ऐसे, हाँ सावधान वगैरह बोलते हैं, लेकिन विष्णु और राम ऐसे पोस्ट में खड़े हैं सीधा स्ट्रेट, विष्णु के पास भी शंख चक्र गदा पद्म है, राम भी स्ट्रेट खड़े हैं, लेकिन कृष्ण टेढ़े खड़े हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम के साथ अगर आप किसी के साथ वार्तालाप करोगे, माता पिता भाई बहन, तो ऐसे देखते हुए बात करोगे आप। इस तरह भगवान अपने प्रेम को प्रकट करते हैं सब जीवों को वृंदावन में, इसलिए ऐसे तीन स्थान में टेढ़े हैं ऐसे। तो इस तरह ये चार चीज और इनको इकट्ठित करके इधर बताया गया है, लीला प्रेमणा प्रियादिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयोः इत्यसाधारणं प्रोक्तं गोविंदस्य चतुष्टयम्। ये भगवान गोविंद के चार गुण है, विष्णु के पास भी नहीं है ये चार गुण, ऐसे बताया गया है सर। विष्णु मुरली नहीं बजाते, विष्णु तीन त्रिभंग ललित में नहीं कड़े रहते विष्णु, और इस तरह की प्रेम माधुरी जो अभिविध भक्तों के साथ भगवान करते नहीं करते हैं। इस तरह लीला माधुरी, इनका लीला अलग ही है कृष्ण का, किसी ने ऐसे लीला कभी नहीं किया है। इस तरह उनकी गुणगान किया गया है इधर। वापस हम पावर पॉइंट में जाएंगे इधर, इसलिए ये बताया मैंने नारायण और कृष्ण के। देखिए छड़ी लेकर आ रही है यशोदा मैया कृष्ण को ढूंढते हुए। अभी कृष्ण तो चोरी कर रहे हैं माखन, लेकिन बलराम पीछे छुपे हैं वो कंबक के पीछे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं ऐसे लीलाएं करते हैं भगवान है। तो शास्त्र ये भी बताते हैं कि कृष्ण के संबंध में वो परम तत्व है जिसके बारे में मैंने पहले भी आज बताया, और अनेक शक्तियां उनके पास, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, संवित शक्ति, संदिनी शक्ति, खिलादिनी शक्ति है, जैसे जीव शक्ति है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति है, और ऐसे अनेक शक्तियां हैं जो जैसे पहले भी हमने सत्रों में बताया आपको, संहार शक्ति है उनके, उनके पास कृपा शक्ति भी है। तो ये सब शक्तियां भगवान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और सलाम मारकर सेवा करते हैं भगवान को, जब भी चाहिए वो भगवान को सेवा करने के लिए तैयार होते हैं ऐसे। तो इस तरह भगवान सर्वशक्तिमान है। और तीसरा बहुत जैसे सर्वशक्तिमान के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर कोई धनी व्यक्ति हो उसके पास शहर में 10-20 घर हो, अगर ये कर को तोड़ कर दूसरा बांधना हो तो खुद नहीं जाना नहीं पड़ता उसको, वो तो पैसा फेंकता है लोग कर देते हैं उसको, सिविल इंजीनियर आता है सब कर खड़ा कर देता है सब कुछ, जिसको तोड़ना है तोड़ता है, जिसको खड़ा करना खड़ा करता है, सब हो जाता है किसके द्वारा, पैसे के द्वारा। तो भगवान के पास कितना पैसा है ना, भगवान भरपूर है थोड़ा कम है, किसके स्वामी है भगवान, इसलिए उनके पास शक्तियों की कुछ कमी नहीं है, जब जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने शक्तियों के द्वारा। शक्तियों को ऐसे अपने आंखों से उनको कुछ इंगित कर देते हैं, बस तुरंत शक्तियां भागती हैं सब करने के लिए ऐसे। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम ऐसे बताया है, उनके पास सहस्र शत का मतलब है 100,000, 1,00,000, लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में हैं ऐसे बताया है। और अखिल रसामृत मूर्ति का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि भगवान इतने बड़े शक्तिशाली हैं और परम तत्व हैं, वो बड़े शक्तिशाली हैं किसी को सताएंगे नहीं, वो सब जीवों के साथ बहुत प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। रस अमृत मूर्ति बताया गया है, जैसे इधर देख रहे हैं रास नृत्य कर रहे हैं कृष्ण सुंदर रूप से, इसी तरह गाय बच्चनों के साथ भगवान का प्रेममय संबंध है, इसलिए उनका नाम है गोविंद जी गोविंदा। इस तरह गोप बालकों के साथ उनका प्रेममय संबंध है, यशोदा नंद के साथ भी, इसको बोलते हैं अखिल रसामृत मूर्ति। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि भगवान अपने काम काज में व्यस्त हैं, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए टाइम नहीं, ऐसा नहीं। हर एक भक्त के साथ इधर देखिए कितने कृष्ण हैं, इधर हर एक गोपी के साथ ये कृष्ण है, इस तरह हर एक जीव के साथ भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं ऐसे। अभी इसके आगे एक मिनट, अभी क्या हुआ, एक श्लोक है पढ़ लेते हैं, नौवां श्लोक, नौवां श्लोक दिखाए। श्री शुक उवाच एवं प्रसादित कृष्ण भगवान ईश्वरेश्वरः आदायागात स्वपितरम बंधूनां चावहन मुदम बताते हैं, पढ़िए अनुवाद।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वरुण देव से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पिता को लेकर घर लौट आए। जहां उनके संबंधी उन्हें देखकर अत्यधिक हर्षित थे।
सब उनके संबंधी खुश हो गए उनको देखकर। नंदस्तु अतीन्द्रियम दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम कृष्णे सन्नतिम तेषाम ज्ञातिभ्यो विस्मितो अब्रवीत। सब नाता रिश्ता सब विस्मित हो गए। क्या क्या सुनकर नंद बाबा ने बोला, बताया उनको क्या क्या हुआ, कैसे मैं गया था वरुण लोक में, और वो जो सारे समुद्र के राजा है फिर भी वरुण देव अपने सब सेवकों के साथ आकर सर झुक कर उनको वीरतर की आरती करके कृष्ण की गुणगान किया उन्होंने। नंद बाबा ने सब अपने गोप मित्रों को जब बोला बताया सब विस्मित हो गए सब उसको सुनकर। तब सब गोप गोपों ने विचार किया अपने मन में, क्या विचार किया, इधर इधर ही कहा इधर भी, क्या भगवान हम सबको अपने दिव्य धाम का दर्शन कराएंगे, ये तो बाद में प्रश्न पूछेंगे। करेक्ट, उनके मन में विचार आता है कि ये तो लग रहा है सब देवता भी इनकी पूजा कर रहे हैं, हमने सुना इंद्र इंद्र देवता जो है उसको पराजित कर दिया भगवान ने, इंद्र भी आकर जाने के बाद गोप मित्र आ पहुंचे उधर, क्योंकि इंद्र की पूजा जब हुआ मैंने बताया आपको अनेक अप्सराएं आए थे, गंधर्व आए थे, ब्रह्मा से लेकर सब लोग आए थे, सब देवता आए थे उसमें, ऋषि मुनिया सप्तऋषि आए थे, सब आए थे। वो सब जाने के बाद जो आरती लैंप इत्यादि पड़ा था उधर उसको लेकर गोपों ने भी भगवान की आरती उतारा, लेकिन उनको मालूम नहीं कैसे पंचरात्रि की विधि करना, फिर भी भगवान ने उनके पूजा को स्वीकारा ऐसे ऐसे बताया है। लेकिन उनको पता चल गया कि कुछ देवता लोग आकर गए हैं, हमारे कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, महान है, ऐसे सोच रहे थे पहले, अभी और एक लीला हो गया ऐसे वरुण जी के साथ, इसलिए इनको मन में एक ऐसे एक प्रश्न उठा, क्योंकि क्या भगवान हम सबको अपने दिव्य धाम का प्रदर्शन कर सकते हैं क्या ऐसे। तो यदि स्वानाम स्वभगवान विज्ञाया किल दृक् स्वयं संकल्प सिद्धये तेषां कृपयै तद् अचिंतयत्। तो भगवान ने जब देखा कि उनकी इच्छा को तुरंत समझ गए भगवान और अपनी कृपा दिखाना चाहते थे अपने पार्षदों को, इधर बताया है, जनो वै लोक ये तस्मिन् अविद्या काम कर्म भी उच्चावचा सुगतिषु न वेद स्वाम गतिम ब्रह्मन पड़ी अनुवाद।
व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार तथा किए गए कर्मों के माध्यम से अपना गंतव्य प्राप्त करते हैं, वे अपने असली गंतव्य को नहीं जान पाते।
करेक्ट, हाँ। तो इधर से जहां आगे क्या बताया है कुछ श्लोकों में, ठीक है और पढ़िए।
इस प्रकार भगवान हरि ने ग्वालों को अपना धाम दिखाया जो भौतिक अंधकार से परे है। भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को ब्रह्मरिद ले आए जिस स्थान से अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था। जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने वह दिव्य धाम देखा तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई।
करेक्ट करेक्ट, तो अभी वैकुंठ का दर्शन दे रहे हैं भगवान सबको। देखिए शास्त्र बताते हैं जैसे इधर आप देख रहे हैं पेड़ सब पानी में दिख रहे हैं ना नीचे, इसी तरह ओरिजिनल आम का पेड़ जो किनारे में है वो दिख रहा है पानी में उल्टा दिख रहा है, इसी तरह भगवान गीता में बताते हैं, ये बताते हैं कि इस दुनिया में असली मार्बल है लेकिन नकली मार्बल है, इसे ये मार्बल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं कारपेट, इसको इमिटेशन मार्बल, मार्बल का नकली है, मार्बल जैसे ऊपर ही ऊपर दिखता है लेकिन एक चाकू लेकर काटो निकल जाता है, ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया में सब लोगों का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें किसी भी का त्रुटि नहीं है, लेकिन इस दुनिया में लोगों का खूबसूरती सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, 2 मिलीमीटर अंदर देखेंगे सिर्फ मांस हड्डी इत्यादि है, यही बताया जा रहा है। देखिए असली करेंसी नोट है, नकली जो बच्चे यूज करते हैं वो नकली होता है, असली आम है जिससे हम आम रस पीते हैं, लेकिन प्लास्टिक आम भी है नकली जो शोकेस में रखते हैं लोग, है ना, कोई खा नहीं सकता उसको, ऐसा है। इस तरह भगवान का असली खूबसूरती है इस दुनिया में नकली है। जीव जब आते हैं इधर उनको अलग अलग रूप मिलता है, उनके कर्म के बंधन के अनुसार ऐसे। तो भौतिक दुनिया जो है ये एक प्रतिबिंब जैसा है पानी में, तो असली पेड़ में असली आम मिलता है, पानी जो प्रतिबिंब में जो आम मिलता है वो तो खाने योग्य नहीं है, अंदर पानी में कोई डुबकी भी मारेगा मिलेगा नहीं उसको। तो भगवान बताते हैं भागवत के भगवत गीता के 15वां अध्याय में, मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, बोलते हैं कि देखो इस दुनिया में सब जीव जो भटक रहे हैं ये मेरे ही अंश हैं, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। देखिए कोई अंश है भगवान के अंश जीव जो एक बाघ के शरीर में, कोई कुत्ते के शरीर में, कोई पंछी के शरीर में, कोई मनुष्य शरीर में, लेकिन आत्मा भगवान का ही पुत्र है, लेकिन इस तरह भटक गया है इस दुनिया में, अलग अलग शरीर धारण करके विविध तरह के यातनाओं को भोगता है वो। इसलिए हम देखते हैं अलग अलग लोगों को अपने अपने कर्म के अनुसार, किसी का गोरा शरीर है, किसी का काला है, किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, इस तरह सब जीव। तो एक ही घर में आप देखेंगे बड़े बंगलों में कोई मालिक भी रहता है, उसकी पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, उधर कॉकरोच भी रहता है, उधर एक चूहा भी रहता है, चींटी भी रहता है, मच्छर भी रहते हैं उधर। तो एक जीव को मच्छर का शरीर दिया है, दूसरे को मालिक का शरीर दिया है, क्यों? कर्म बंधन है, कर्म के अनुसार दिया गया है। इसलिए इधर देखें कोई धनी बनता है इस दुनिया में, कोई गरीब बनते हैं, कोई एकदम मजबूत है शरीर किसी का, कोई कमजोर है, कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, कोई तंदुरुस्त है, कोई मरीज है। तो ये सब अपने कर्म के अनुसार होता है। तो इस दुनिया की खूबसूरती बहुत समय टिकता नहीं है, ऐसे वृद्ध हो जाते हैं सब लोग इस दुनिया में। इसलिए शास्त्र में भगवद गीता में भगवान सिखाते हैं अर्जुन, ये आत्मा जो है एक शरीर के अंदर भी शरीर बदलता है, जैसे बचपन से युवक अवस्था से बुढ़ापा होकर अंत में हड्डी ही हड्डी बचता है शरीर में, लेकिन आत्मा निकल जाता है उधर से, जैसे इधर आत्मा निकल गया शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो इस तरह भगवान बोलते हैं कि हम लोग भगवत नाम को भूल गए हैं इस दुनिया में आकर, लेकिन ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा शरीर परिवर्तित होता जा रहा है, कितने साल हम इस शरीर में बैठे रहेंगे, निकल जाएंगे एक दिन, शरीर में सिर्फ हड्डी हड्डी बचेगा हा? लेकिन अब बाहर निकलेंगे, हम किधर जाना है हा? तो अलग अलग शरीर प्राप्त होता है हा? देखिए अलग 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 शरीर प्राप्त होता है आत्मा को, एक शरीर छोड़कर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे। तो इधर आप देखते हैं एक पिक्चर है, इधर ब्रह्मा बैठे है ना ऊपर, उसके नीचे एक उल्टा पेड़ है, पानी के नीचे प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, वो ही ये भौतिक दुनिया है, 14 भुवन का दुनिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंसे हैं सब जीव, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं इधर। लेकिन वो पानी जो है हमारी इच्छा का पानी है, उसके बाहर देखे राधा कृष्ण खड़े हैं, वो भगवत धाम है। हम लोग इस बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, ओर्दम ओलम अदह शाकम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम चंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद वेद, ऐसे बताया है। ये ऊपर मूल है, डालियां नीचे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये भौतिक दुनिया है, क्योंकि उल्टा पेड़ है ये, इस उल्टा पेड़ को काटना चाहिए भगवान बोलते हैं, ज्ञान का शस्त्र लेकर काटो और उधर असली पेड़ में चले जाओ, जो भगवत धाम में जो राधा कृष्ण खड़े हैं वो ही असली पेड़ है, उधर चले जाओ भगवत धाम में, ऐसे बताते हैं। तो इधर नीचे देखते हैं ये व्यक्ति रो रहा है, क्यों? क्योंकि हम सब लोग भौतिक दुनिया में ऐसे ही रोते हैं, विविध तरह की समस्याओं को सुलझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ध्यान करके कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग ऐसे करने वाले लोग कभी कभी ब्रह्म ज्योति तक चले जाते हैं, जो उनका चेहरा देखिए कैसा है, 00 में है। लेकिन जो लोग ऊपर जाते हैं भगवत धाम में प्रवेश करते हैं, भगवान को मिलते हैं, उनको भगवान के साथ प्रेममय संबंध जुड़ता है, यही श्लोक भगवान बताते हैं। निर्मान मोह
जित संग दोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुख सज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्।
भगवान बोलते हैं कि जो लोग अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, मोह से जो पीड़ित जीव है वो मोह से ऊपर उठ जाते हैं, निर्मोह हो जाते हैं, सब तरह के गुणों के संग से ऊपर उठ जाते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो जाते हैं, वो काम वासनाओं से ऊपर उठ जाते हैं भगवान के सेवा वृत्ति के द्वारा, और सब तरह के द्वंद्वों से शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे जीव जो है वो अमूढ़ा का मतलब है आत्मा परमात्मा का प्रेममय संबंध को पुनस्थापित करके वो पदम अव्ययम, अव्यय पदम जो है भगवत नाम में पहुंच जाते हैं, ऐसे बताते हैं।
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम,
ऐसे बताते हैं अर्जुन। वो लोग जो है गोलोक धाम मेरा, उधर सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं, वो दीप्यमान लोक है, वो भगवत धाम है, उधर जो जाएगा एक बार वापस नहीं लौट आएगा, वो धाम मेरा धाम है, ऐसे भगवान बताते हैं। जिधर पांच तरह के रसों के साथ भक्त मेरा आदान प्रदान करते हैं, जैसे माधुर्य रस में गोपियां और वात्सल्य रस में बड़े गोपियां जो इधर छोटे कृष्ण को लेकर वात्सल्य भाव में लीला कर रहे हैं उनके साथ, और गोप मित्र नाच रहे हैं कृष्ण बलराम के साथ साख्य रस में, और शांत रस में गाय बच रहे हैं, इस तरह विविध तरीके से भक्त लोग आदान प्रदान करते हैं। और कैसे उस स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं, अकर्म के द्वारा। कैसे अकर्म करना है, अकर्म का मतलब सब कर्म में कृष्ण के लिए करना चाहिए, कहते हैं कृष्ण को भोग चढ़ाकर प्रसाद करना चाहिए, सुबह उठते हैं उठते उठते नाम लेते ही उठना चाहिए, नाम जपना चाहिए, जैसे हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा सिखाया। तो एक व्यक्ति तो आया था मायापुर में, एक स्टाफ रिपोर्टर आया था, तीन दिन ठहरा हुआ और तीन दिन के बाद वापस लौटा है कलकत्ता में, उसके ऑफिस में जाकर सबको हरे कृष्ण बोला उसने, सबको आश्चर्य हुआ, अरे हरे कृष्ण कैसे बोलते हो, बोला कि तीन दिन में अभ्यास हो गया उधर, उधर मायापुर में किसी को भी देखो बोलते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो हम लोग भी ऐसे हरे कृष्ण बोल बोल कर हमारे चित्त में बस जाएगा हरे कृष्ण, ताकि अंतिम काल में क्या ना स्मरण आएगा, हरे कृष्ण कृष्ण स्मरण आएंगे ऐसे। तो आध्यात्मिक जगत जिसको भगवान ने प्रदर्शन किया उसका उसको देखेंगे हम। देखिए इधर गोलोक है और गोलोक को छोड़कर वो बहुत बड़े कमल है, उसको छोड़कर अनेक वैकुंठ लोक है, जिधर विष्णु अलग अलग नाम से विराजमान है वैकुंठ लोक है, साकेत धाम है जिधर प्रभु रामचंद्र सीता सीता माता है, सीताराम का लीला चल रहा है, और उधर गोलोक में कृष्ण का लीला चल रहा है। नीचे जो आप देख रहे हैं काला वाला, उधर हम लोग हैं ब्रह्मांड के अंदर, महाविष्णु सृष्टि करते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांडों को, उधर हम लोग उस साक गोणी के अंदर हम लोग हैं, वो गोणी से बाहर निकल कर हमें गोलोक धाम जाकर नित्य लीला में जुड़ना है। वसंति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम्। बता गया कि वैकुंठ में रहने वाले वैकुंठवासी जो होते हैं उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की भावना कभी होता ही नहीं है, हमेशा भगवान के परो धर्म में सेवा में जुड़े हैं। इधर बताया कि उधर रहते हैं कौन, भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण रहते हैं, वो तीन गुणों से ऊपर हैं, विशुद्ध सत्व में रहते हैं, उधर लेश मात्र भी रजोगुण तमोगुण की प्रभाव नहीं होता, उधर शुद्ध अवस्था में रहते हैं वो। सब सेवक हैं भगवान के उधर।
नमो नारायण
तो इस तरह उधर जो पेड़ है, इधर इस दुनिया में जो पेड़ है, बहुत बड़ा फर्क है। इस दुनिया में केला का पेड़ केला ही देगा, आम का पेड़ आम ही देगा ना। उधर कल्प वृक्ष रहते हैं, आपको किसी भी फल दे सकते हैं, किसी भी फूल दे सकते हैं। उधर सब मौसम में फल फूल उधर प्राप्त होते हैं, और सब पेड़ आध्यात्मिक हैं और भगवान के सेवक हैं, सब देते हैं भगवान की सेवा के लिए। सुंदर है ना, कितने फूल हैं पल हैं। इसी तरह उधर के पंछियां भी जो होते हैं, इधर बताया गया है कि पारावतान्य वृत सारस चक्रवाक दात्यूग हंस शुकति तेरी बरखिणाम यह कोलाहलो विरमते चिरमात्र मुच्चय भृंगादिपे हरिकताम इव गायमाने। जब भृंग जो होता है भगवान के हार में जो रहता है ना भृंग, वो जब उनकी गुणगान गाते हुए आता है, सुंदर गाने वाले पंचियां भी अपने कलरव को बंद कर देते हैं, जैसे तोता, जैसे कोयल, जैसे मोर है, इनका बहुत मीठा आवाज होता है। मोर का आपने सुना होगा
गेया, गेया।
ऐसा आवाज करता है, और कोयल भी बहुत मधुर करता है,
कू कू
ऐसा करता है कोयल। तोता थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन ये सब पंछियां क्या करते हैं, चुपचाप बंद कर देते हैं, क्योंकि भ्रमर का आवाज तो उतना बड़ी आवाज नहीं है, लेकिन वो भी कुछ कथा बोलने जा रहा है। वो भगवान के संपर्क में आया है, अभी आ रहा है, ठीक हम उसकी कथा सुनते हैं, उसकी गाना सुनेंगे, ऐसे बोलता है, तो उनको सुनते हैं सब। भ्रमर है, भ्रमर गा रहा है, सब सुन रहे हैं भ्रमर की गीत। और उधर सब तरह के फूल जो हैं वो भी सर झुकते हैं तुलसी को, क्योंकि तुलसी जानते हैं कि तुलसी भगवान के प्रिय भक्त है। इधर आप देखेंगे बहुत सुगंधी फूल हैं। ऐसे उधर बकुल है, कमल है, विभिन्न तरह के, जैसे इधर बताया है, नाम बताया है इधर, मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकारण पुन्नाग नाग बकुलाम पारिजात, पारिजात फूल है, ये सब नाग केशर है, ये सब फूल झुकते हैं। और इतना ही नहीं, बताया कि उधर रहने वाले वैकुंठवासी होते हैं, पति पत्नी सबके शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, पति पति का शरीर जो है वो भी विष्णु जैसे दिखता है, चतुर्भुज रूप है, मुकुट पहने हैं, कुंडल पहने हैं, सुंदर शरीर है, लेकिन दास है भगवान के। जैसे अभी भारत में भी हम लोग प्रजा हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री है, उसका भी दो हाथ दो पैर एक शहर होता है, करेक्ट है ना, फिर भी उसके पास शक्ति है, पोटेंसी है, जैसे सारे भारत को वो छुट्टी दे सकता है, अगर लॉकडाउन करना तो लॉकडाउन कर सकता है ना, तो कुल ना हो तो खोल सकता है। इसी तरह भगवान भी देखने में भगवान का शरीर और ये भक्तों का शरीर एक समान दिखता है, लेकिन भगवान के पास कौस्तुभ मणि है, श्री वचन चिन्ह है, और उनके पास असीमित शक्ति है, असीमित मात्रा में है। तो लेकिन ये जो सेवक होते हैं, अपनी पत्नी के बारे में बताया गया है कि उनकी पत्नियां जैसे बिजली जैसे चमक रहा उनका शरीर, और पतियों का शरीर बादल जैसे नीलिमा है उसमें है। लेकिन कभी भी पति पत्नी के बीच में एक विकार नहीं उठता, आकर्षण नहीं होता, लेकिन दोनों के मन में भगवान की सेवा देने की इच्छा होता है। जैसे इधर बताया है, एक सब कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, कृष्णात्मना नरज नरज आददुरुत्म याद है, ऐसा बताया। सब कृष्ण का चिंतन में है अपने मन।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण,
और अभी हम गोलोक में प्रवेश कर रहे हैं। गोलोक तो वैकुंठ लोकों जैसे एक नेकलेस होता है, नेकलेस में पेंडेंट होता है ना, इस तरह सब वैकुंठ लोकों में बीच वाला क्या है, गोलोक है। उधर ब्रह्मा जी बताते हैं, यत्र नैसर्ग दुर्वैराह सहासन मृगादय मित्राणी युवाजिता वास दुर्तरुतर्षकादिकम, बताते हैं कि उधर रहने वाले प्राणियों के बीच में वैरी भावना नहीं है। शेर बाघ और हिरण सब साथ में पानी पीते हैं, साथ में नाचते हैं, उधर क्रोध नहीं है, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, ये गोलोक धाम है। ऐसे ब्रह्मा जी बताए, ब्रह्मा जी ने देखा, ऐसे ये भौतिक दुनिया में ऐसे देखा गया है। एक बाघ एक हिरण को पीछे पड़ता है, उसको भागता है, पकड़ता है, फाड़ता भी है, भगवत धाम है, गोलोक धाम है। सब साथ में, शेर है, बाघ है, गाय है, हिरण है। सुंदर है ना।
तो अभी नंदा महाराज का वरुण देव के साथ जो अपहरण हुआ उसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर ने वर्णन किया है। ऐसी सोच की व्यसनों के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति में प्रगति हो सकती है, ऐसे कुछ लोगों का गलत फहमी है। तो वरुण शब्द का मतलब क्या है, अगर कोई वर्ण पीकर कोई अज्ञानी बन जाएगा तो वो इस तरह का गलती किया उसने, करेक्ट है ना। कौन? वो जो वरुण का सेवक था नंदा बाबा को उसने जाकर पकड़ कर लेके आया था, उसके द्वारा भूल हुई, गलती हुई। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई इस तरह के व्यसन में जुड़ते हैं, शराब पीने की नहीं तो किसी भी तरह का नशा पदार्थ कोई स्वीकारेगा तो उसके बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, उसको यह नहीं होगा, भक्ति में स्थिरता नहीं प्राप्त होगा। कुछ लोग हैं, मुझे याद है कि एक व्यक्ति था, वो 4-5 साल 16 माला भी कर रहा था लेकिन दीक्षा नहीं हो रहा था उसका। कारण क्या था? वो तंबाकू छोड़ नहीं पा रहा था, तंबाकू हमेशा ऐसे ऐसे करते करते का कर उसका आदत पड़ गया था। बुढ़ा था उसका, 70-80 हो गया था उम्र, लेकिन छोड़ नहीं पाया, ऐसे दीक्षा भी नहीं मिल रहा था उसको। और बाद में उसको जब दीक्षा हो गया, 2-3 साल बहुत उत्साह से भक्ति की, अभी वापस पुराने वासनाएं मन में याद आया, अरे पहले हम खाते थे तंबाकू मार मार कर, ऐसे खाते थे हम, अब याद आ रहा है, खाने की इच्छा होता है। कुछ भक्तों को बोलता था मुझे याद आ रहा है, भक्तों को याद आएगा उसको मिटा दो उसको, है कारण क्योंकि वो खाने से अगर ऑलरेडी हम लोग एक नशे में हैं, हम देह के साथ हम पहचानते हैं, देहात्म बुद्धि बोलते हैं उसको, इस तरह का नशा नशेले पदार्थ लेने के बाद क्या होता है, वो देहात्म बुद्धि और बढ़ जाता है, और जितना वो बढ़ेगा हम मूर्ख होकर गलत करेंगे। कैसे गलत किया वरुण के सेवक ने, नंदा बाबा कृष्ण के पिता हैं, उसको ना समझकर अंधे होकर उन्होंने उनको उठा कर लेके आया। इस तरह हम लोग भी भूल से भक्ति मार्ग में जुड़ने के बाद भी अगर हम नशा पान करेंगे कुछ ये सोच करके हमें इससे आनंद मिलेगा, हम छोड़ नहीं सकते हैं इसे, तो हम देहात्म बुद्धि को बढ़ाते हैं, ऐसे वो सिखाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर वरुण की लीला से। कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, थैंक यू हरे कृष्ण।